ओम शांति। आज हमारे साथ हैं हमारे आदरणीय सूरज भाई जी, और यह प्रश्न उत्तर का सेशन है। बस सब कुछ योग और पुरुषार्थ से संबंधित क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैसे बहुत सारे भाई बहन अमृत वेले उठ जाते हैं, तो कभी योग लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी कभी कंसंट्रेशन नहीं रहता है क्योंकि नींद का प्रभाव होता है, और यह जैसे कि अव्यक्त मास है, तो योग की विजुअलाइजेशन को और कैसे क्लैरिटी के साथ हम अपने पुरुषार्थ में ऐड करें।
तो अमृत वेला हमारा मुख्य सब्जेक्ट है। जिसका अमृत वेला सफल, उसका जीवन सफल। ये तो सच है कि वो सदा एक सा नहीं रहेगा, क्योंकि रात के जो हमारी नींद है या स्वप्न है या जो फीलिंग है निगेटिव पॉजिटिव, कलयुग का जो माहौल रहता है सारी रात तामसिक, उसका इफेक्ट मनुष्य के ब्रेन पर रहता है। उसको क्लीन करना ये कला है। इसलिए जिनको बहुत अच्छा अमृत वेला व्यतीत करना हो, सोने से पहले आधा घंटा अच्छे अभ्यास करने चाहिए। मुरलियां चली हैं इस पर साकार में ही, और सवेरे उठकर कुछ सुंदर संकल्पों से मन को चार्ज करना चाहिए। वो सुंदर संकल्प बहुत सारे हैं हमारे पास। उठते ही बैठ गए फिर नींद आ जाएगी। घरों में रहते हैं आप सभी, बहुत वहीं बैठ गए नींद आना पॉसिबल है। इसलिए थोड़ा फ्रेश होकर, थोड़ा सुंदर चिंतन करके पहले पांच स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, फिर कंसंट्रेशन करेंगे। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन इंग्लिश वर्ड है। इसका अर्थ है बाबा के स्वरूप को देखना, आत्मा के स्वरूप को देखना, अपने देव स्वरूप को देखना, पूज्य स्वरूप को देखना, फरिश्ते स्वरूप को देखना। ये देख वही सकेंगे जिनकी बुद्धि क्लीन हो, स्वच्छ बुद्धि नेत्र है। बुद्धि के तीसरे नेत्र से ही हम इन सब चीजों को देखते हैं जो आंखों से नहीं दिखती हैं। अब ये हर एक के अपने ऊपर है कि बुद्धि को कितना क्लीन करते हैं। मैं एक उदाहरण दिया करता था, किसी बहन ने अपने घर की सफाई करके कूड़ा एक थैली में भर के बाहर रख दिया हो, आजकल उठा ले जाते हैं ना म्यूनिसिपैलिटी वाले। दूसरी बहन भागी भागी गई, उस कूड़े की थैली को अपने घर में ले आई। करेगा दुनिया में कोई ऐसा? लेकिन बुद्धि में बहुत लोग ऐसा ही कर रहे हैं। गंदगी दूसरों की, सोच लो बाप। जानकी दादी का ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता था। शुरू शुरू में बोला करती जब बाबा व्यक्त हुए, तो वो बहुत समय यहाँ रहती थी। कहती थी अवगुण दूसरों के, मुसीबत हमारी। मुझे ये बात बड़ी प्रिय लगी। उसका हम चिंतन कर रहे हैं, न जाने क्या क्या सोच रहे हैं। संगम युग पर समझदारी है बुद्धि को स्वच्छ बनाना। सोच लें आप सभी, बुद्धि में पास्ट का ही बहुत कुछ भरा हुआ है, विकर्मों के अलावा भी बहुत कुछ। उसके साथ यदि वर्तमान का भी हम भरते रहेंगे तो पूरा कल्प इससे प्रभावित होगा, अगला कल्प, और आने वाला जो परिवर्तन का समय है उसमें हम मजबूती से स्थिर नहीं रह पाएंगे, कष्ट होंगे। इसलिए आप यहां बत्ती में आए हैं, बुद्धि को स्वच्छ करने का प्लान बनाओ। जैसे देश को स्वच्छ करने का प्लान मोदी जी ने बनाया ना, हम बुद्धि को स्वच्छ करने का अभियान चालू कर दें। क्यों रखें हम दूसरे की गंदगी अपनी पवित्र बुद्धि में? क्यों करें हम व्यर्थ का दूसरों का चिंतन अपनी इस वरदानी बुद्धि में? हमें सोचना है, बहुत सुंदर गॉडली गिफ्ट है हमारी बुद्धि, है या नहीं? सर्वश्रेष्ठ अगर कोई वस्तु है आत्मा के पास, वस्तु शब्द तो उसके लिए उचित नहीं, वो है बुद्धि। देखो आप सब पढ़े हैं, कोई फर्स्ट क्लास, कोई टॉप क्लास, कोई थर्ड क्लास, कोई फेलियर क्लास, जो फेल होते हैं उनकी मेंटेलिटी कैसी हो जाती है प्रारंभ से ही। और जो बुद्धिमान है हर फील्ड में, चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो, कोई क्रिएटिव वर्क हो, आपको फैक्ट्री हो, जो बुद्धिमान है वो कैसे सफल होता है। तो सभी चिंतन करें, बुद्धि का वरदान संगम युग पर मिल रहा है, पूरे कल्प के लिए जैसा लेना चाहे ले लें। बाकी अमृत वेले पर 3 क्लास हैं, YouTube खोलेंगे मेरे नाम से, मैं बता चुका हूँ, गहरी बात क्लिक करेंगे, उसमें बहुत सारे लेक्चर हैं, उसमें 3 अमृत वेला के हैं, पूरा डिटेल, क्या सोचें उठते ही, सोने से पहले क्या करें, रात हमारी अच्छी बीते, भोजन थोड़ा हल्का हो, क्योंकि भोजन से अगर एसिड गैसेज बनती हैं तो अमृत वेला सुख नहीं मिलेगा। तो या तो अच्छा अच्छा माल खा लें रात को या प्रभु जी से सुंदर माल ले लें अमृत वेले, एक ही चीज होगी, ठीक है। सोचना स्वयं को स्वयं है, सोना भी टाइम पर चाहिए, नींद कम होगी तो भी अमृत वेले का सुख नहीं मिला, क्योंकि ब्रेन बहुत फ्रेश होना चाहिए। कोई सोचे 12 बजे सो के 4 बजे उठ जाऊं योग करूं, मैं तो अमृत वेले उठता हूं, नहीं काम चलेगा। हमें अमृत वेले उठकर कोई बाबा को खुश नहीं करना कि आ गए बाबा आपके पास, हाजिरी लगा दो हमारी, हमें तो आनंद लेना है, वरदान लेने हैं, खजाने लेने हैं, इसमें बाबा को कोई लेना देना नहीं, उसको तो हमें भरपूर करना है। इसलिए अपनी प्लानिंग अच्छी करें, परिवार वालों को, जैसे मैंने कहा था कई बाधाएं हैं, अकेले आप ज्ञान में हैं, कोई 2 हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, कई तरह की बाधाएं आपको हैं, लेकिन अगर लगन श्रेष्ठ है, ये बात सभी याद रखेंगे, अगर कुछ विशेष पाने की उमंग है मन में तो बाबा लाइन क्लियर कर देता है, सबको सहयोगी बना देता है। शुरू में बाबा कहा करते थे, लगन से सभी विघ्न जलकर नष्ट हो जाते हैं, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी। तो सभी बहुत अच्छा अमृत वेला करेंगे, याद रखेंगे 3 बात जो बाबा ने कही। क्या करता है बाबा अमृत वेले?
भरपूर,
भूलो नहीं, इसलिए आपसे बुलवा रहा हूं। प्लान बना लिया है भगवान ने हमें स्नेह सहयोग शक्तियां देने का, रोज याद करो, कहीं लिख के रख देना, तो सवेरे जब भगवान ये सब बांट रहा हो, हम ढीले ढाले रहेंगे तो आएगा ही नहीं, किसी और को देगा फिर बाबा, फिर बाबा की शिकायत करेंगे, उसको ज्यादा दे दिया, मुझे कम दिया, उसने तो समान दिया, लेने वालों ने गड़बड़ कर दी है। तो सभी बात चुस्ती से करेंगे। नेक्स्ट,
वैसे नेक्स्ट पुरुषार्थ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, हम सद्गुण संपन्न बने हैं, सर्व शक्तियों से भरपूर बने हैं, सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा किया है, ये चेकिंग कैसे करें?
संतुष्टता से, जब हम फुल हो जाते हैं तो संतुष्ट हो जाएंगे, और अगर जीवन में कोई बाधाएं आएंगी तो हम शक्तिशाली हैं, सहज पार करेंगे, बाधाएं हमें परेशान नहीं करेंगी। क्या करेंगे? हम बाधाओं को परेशान कर देंगे, भागो, वो परेशान होके भाग जाएंगी आपे ही। हमारे पास गुण हैं, हम सभी एक संगठन में रहते हैं, चाहे आप परिवार में, चाहे कोई सेवाओं में, संगठनों में हम गुण मूर्त सबको दिखाई देंगे, हम बहुत नम्रचित्त हैं, हमारी वाणी बहुत सुखद है, हमारा व्यवहार बहुत आकर्षक है, हमारे वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हैं, सब दिखाई देगा। तो गुणों से, शक्तियों से, और जो सभी खजाने बाबा ने दिए हैं, हमारा जीवन सरल होता जाएगा, सहज, ये सब स्वरूप होगा, प्रूफ होगा कि हम फुल हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ होगा, हम व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। और अगर कोई बाधा आती है, मान लो बीमारी हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, तो हमारी स्थिति विचलित नहीं होगी। प्रैक्टिकल स्वरूप, क्योंकि मृत्यु बहुतों को विचलित करती है। ज्ञानियों के लिए विचलित होने की बात नहीं है, ज्ञानियों को विचलित नहीं होना चाहिए, पर हो जाते हैं। छोटी आयु में किसी की मृत्यु हो गई तो परिवार को लगता है अब कमाने वाला कोई नहीं रहा, हमारा क्या होगा। इस संकल्प को हटा दो। कैसे हटाएंगे बोलो? ये बहुत गहरी बात है। किसी के परिवार से कमाने वाला चला गया, वो सोचेंगे तो जरूर कि अब क्या होगा। परंतु ये चिंता हमें न सताए, क्या सोचना चाहिए? भूल गए आप तो सब कुछ? जिसका हमने हाथ पकड़ा है वो सारे संसार की पालना करने वाला है, है? हमारी भी करेगा। इस संसार का क्रम ही ये है, एक जाता है दूसरा आता है। सदा कोई रहता नहीं है यहाँ, कर्मों के हिसाब के अनुसार जन्म और मृत्यु फिक्स हो रही हैं। अब हम बड़ा बड़ा खेल देखेंगे आगे चल के, मैं क्लासेज में बहुत बार कह चुका हूं, और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और वो ये होगा कि बच्चों की मृत्यु बहुत होंगी। ये मैंने सीधा बोल दिया।
कई बार ऐसा होता है कि अपने घर से छोटा जाता है,
हाँ,
तो लगता है कि बाबा ने क्यों नहीं बचाया।
हाँ, तो इसमें प्रश्न उठते हैं, संशय होती है। कई बच्चे ऐसा जन्म ले रहे हैं कि जन्म से दुखी हैं, जिनके घर में जन्म लिया वो भी दुखी हैं। तो ये खेल बहुत चलेगा। ये रहस्य बाबा ने बहुत पहले बता दिया था, जिनके कर्म पाप कर्म अति में हैं उनके कई तरह से चुकते होंगे, और उसमें एक विधि होगी जल्दी जल्दी जन्म जल्दी जल्दी मृत्यु। एक डेढ़ साल में भी जन्म मृत्यु हो जाती है ना, क्योंकि जन्म लेने में और मृत्यु में ही आत्मा को सबसे अधिक कष्ट होता है। इसलिए सबसे जो बड़े हिसाब किताब हैं वो इन दोनों में चुकतु हो जाएंगे। तो हम ये खेल बहुत देखेंगे, लोग चिल्लाएंगे सरकारें कुछ नहीं कर रही, इतने बच्चे मर गए, ये हो गया वो हो गया, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके इसके लिए भी हम सब तैयार रहें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय को जब हम देखते हैं तो देखने में आता है, चाहे ब्राह्मण परिवार हो लौकिक परिवार हो, कुछ न कुछ हिसाब किताब होता रहता है ब्राह्मण परिवार में भी। और जब साथ रहने वाले लोग हिसाब किताब में हो, उस समय पर हम अपनी स्थिति का कैसे बैलेंस करें?
साथ रहने वालों से ही तो प्रॉब्लम है।
जी,
मनोहर दादी हंसाया करती थी, दूसरे की माँ मर गई तो कहेंगे ड्रामा, याद करो भाई ड्रामा है। अपनी मर जाए, क्यों मरी, बाबा ने मदद नहीं की, मेरी माँ को ले गया बाबा, कैसा है। तो साथी जब हिसाब किताब ले रहे हो, एक ही चीज हमें बहुत मदद करेगी कि हम टकराव में ना आए, सुभावनाएं रखें, क्योंकि अगर हम टकराव में आएंगे तो हमारा हिसाब किताब और जटिल होता जाएगा, और अगर हम सुभावनाएं रखेंगे तो हिसाब किताब जल्दी चुकत हो जाएगा। लेकिन हमें ये याद रहे कि जो हमारे साथी बने हैं लौकिक में भी, आपकी शादी हुई, आपका पति, आपके घर में तीन बच्चों ने जन्म लिया है, ये सब क्यों लिया है? कर्मों का हिसाब है। और अंत में नाते उनसे ही जुड़ रहे हैं जिनसे कर्मों का हिसाब थोड़ा ज्यादा है। इसलिए कईयों के संबंधों में कड़वाहट हो रही है, डिवोर्स हो रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, बच्चे भी ऐसे जन्म ले रहे हैं कि हिसाब किताब लेने आए हों जैसे साफ दिखाई देता है। स्वीकार कर लेंगे, इसे याद रखेंगे तो परेशानी नहीं होगी, और हम उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस दें। बाबा ने एक बहुत अच्छी चीज सिखाई है, रोज सवेरे कोई भी टाइम, सवेरे माना 6 बजे तक कभी भी, बहनों को भी चाहिए, अभी तो कोर्स आदि नहीं हो रहा, पर जब कोर्स करने लोग आए, आपके पास कोई भी घन समस्या लेकर आए, किसी को कड़ी बीमारी हो गई हो, आपको पता हो, तो सवेरे 15 मिनट योग का दान उन सब आत्माओं को दिया करें। तो ऐसे जो अपने साथी हैं उनको भी योगदान दिया करें, और व्यवहार में रहते एक बहुत अच्छी चीज का प्रयोग करके आप देखें। इसको बाबा ने कहा, वृत्ति से दूसरों की वृत्ति को बदलो। तो आपके जो भी साथी हैं, मान लो आपको उनसे कठिनाई हो रही है, तो उन्हें आत्मा देखना, ये आत्मा है, और संकल्प करना ये बहुत अच्छी आत्मा है, भले ही वो अच्छी ना हो। संकल्प थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको, जो आपसे रोज लड़ रहा हो आप कैसे सोचेंगे उसके लिए कि ये बहुत अच्छा है। फिर भी अगर आप इतना कर सकें, ये बहुत अच्छी आत्मा है, ठीक है हमारा कोई हिसाब किताब चुक तो हो रहा है, पर मूल रूप से ये आत्मा बहुत अच्छी है, उसने कभी आपको सहयोग भी तो दिया होगा या नहीं। एक छोटी सी घटना याद आ गई, बाबा जब थे तो हमारे यहाँ हमारे पास यज्ञ में मधुबन में एक बुजुर्ग भाई भी रहते थे, खन्ना जी। हम छोटे थे, वो बुजुर्ग थे 60+, बल्कि 70 के आसपास। तो हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाया करते थे। कहा, मैंने मामा को कहा, मामा मेरी युगल मुझे बहुत परेशान करती है, क्या करूं। तो मामा ने पूछा सब कुछ और देखा कि इसकी जो वृत्ति है वो अपने युगल के लिए बहुत निगेटिव हो गई है, बड़ी खराब है, मुझे तंग करती है, साथ नहीं देती। तो मामा ने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताओ, कभी उसने आपको बहुत अच्छा सहयोग भी दिया है। तो उसको तुरंत याद आया, दिया है, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ, हम पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए, हमारे पास कुछ नहीं था, उसने अपने सारे जेवर मेरे आगे रख दिए, लो इन्हें बेच दो और कुछ भी धंधा करो। तो कहा, ये कोई छोटी बात है, दे सकती है मैंने अपने सारे जेवर, नहीं देती। मामा ने कहा, इतनी अच्छी बात, उसने इतना सहयोग दिया, तुम उससे घृणा रख रहे हो। और कहा, मेरी भावनाएं तुरंत जो बदली, तो उसका पत्र आ गया प्यार भरा, दोनों में जो कटुता थी वो समाप्त हो गई। संबंधों को मधुर बनाने के लिए दूसरों को मन ही मन अप्रिशिएट करो, उनकी प्रशंसा करो, उन्होंने कभी सहयोग दिया है उसको याद करो। बल्कि हमें एक चीज और करनी चाहिए, सवेरे ही ऐसे हमको कि द्वापर से जिन आत्माओं ने भी हमें हेल्प की है, किसी भी तरह मदद की है, उन सबको सच्चे दिल से शुक्रिया। तो वो यही है ना, फिर से सहयोग देने आ जाएंगी। नेक्स्ट,
जैसे वैसे कुमार जीवन में पुरुषार्थ करने के लिए जो मुख्य बातें हैं, ज्ञान और योग और बाहरी जीवन, उनमें जो बैलेंस रहे वैसे सब, उसमें मुख्य बातें ऐसी कौन सी हैं जिनमें हम ध्यान
कुमार अगर केवल दो बातें अपना लें, अमृत वेला योग करना और मुरली में आना, तो उन्हें जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन कुमारों की विशेषता है, हड्डियां तो सेवा में ले लो पर सवेरे ना उठाओ, तभी तो मीठी नींद आती है। बाबा आपने सारा अच्छा किया, बाकी सवेरे उठने का जो कर दिया ना, ये बड़ा मुश्किल है। इतनी मीठी नींद, सवेरे सवेरे आनंद आता है सोने में, आप गीत बजा देते हो, मेरे लाडलो जागो, अच्छा नहीं किया। तो बस कुमार दो चीज पक्की करें, सेवा के साथ अमृत वेला योग और मुरली, सब ठीक रहेगा।
बस इसी से जुड़ा हुआ कि आपने शुरुआती दौर में जब आप मधुबन में आए, तो उस समय पे आपने विशेष क्या पुरुषार्थ किया?
अभी वो तो लंबी चौड़ी कहानी है, उसको तो आप छोड़ दो, मैंने थोड़ा बहुत सुनाया। जो यहाँ इंटरव्यू हुए थे ना, भाई बाबा अव्यक्त हो गए थे, तो बहुत ज्यादा वैराग था यज्ञ में, थोड़े से लोग रहते थे हम लोग, बाबा की छाप सबके ऊपर थी, दादी प्रकाशमणि यहाँ आ गई थी परमानेंटली। तो मैंने तो मुझे तो ऐसा रहा कि अव्यक्त बाबा ने गाइड किया है बहुत ज्यादा, सकार में तो गाइडेंस मिली, लेकिन अव्यक्त बाप दादा की गाइडलाइन बहुत मिली। इस अनुसार मैं रोज अच्छे अभ्यास करता रहा। ये जरूर कहूंगा, थोड़े में बताऊं कि मेहनत तो करनी पड़ती है कुछ पाने के लिए। तब हम छोटे थे तो मेहनत अच्छी की, एकांत में भी मैं कम से कम 6 घंटे रोज रहता था। पांडव भवन के ऊपर इधर उधर जितनी पहाड़ियां हैं सब पे अकेला ही चला जाता था। तो अच्छी मेहनत की चार्ट लिखे बहुत सारे, योग को टॉप पर पहुंचाने का लक्ष्य था, वो हुआ सब। और शांति स्तंभ बना था, वहां बैठ के बड़ा मजा आता था। बाबा के कमरे में जाने की कोई ये रीति नहीं थी, सबसे पहले मैंने ही जाना शुरू किया। अब उधर से ही रास्ता था अंदर से, बहने सोती थी। अब एक दिन मैं चुपचाप उठ के दबे पैर अंदर चला गया, अभी लाइट भी नहीं थी वहां कुछ भी, बैठ गया अंधेरे में। तो संतरी दादी होती थी, आप जानते होंगे संतरी दादी, उन्होंने एक बार मुझे देख लिया, सूर्य तुम आते हो, वो भी आने लगी। और जब वो आने लगी तो एक छोटा सा बल्ब भी लग गया बाबा के कमरे में। हम दोनों बैठने लगे, फिर तो वो एक प्रथा सी आगे चल गई। और कुछ समय के बाद बाहर से ये गेट बना, वो कुछ साल के बाद बना, तो उसमें बहुत पावरफुल योग होता था। तो थोड़ी मेहनत भी की, झोंपड़ी तब बाबा की बिल्कुल सिंपल होती थी, वहां सांप भी रहते थे दो, बाबा उन्हें मारने नहीं देता था, जोड़ा था काले। हमारे कमरे के ऊपर भी रहते हैं दो, ऐसे ही आ जाते हैं कभी कभी दर्शन देने। तो मैं वहां अकेला ही जा बैठता था, वहां भी लाइट नहीं थी, लाइट नहीं होती थी क्योंकि सारे आबू में जनरेटर से बिजली पैदा की जाती थी तो बड़ी महंगी थी, कम से कम लाइट का यूज होता था। लेकिन बैठ के भी बहुत अच्छी तपस्या की बाबा के रूप में शांति स्तंभ पे। और मैं किचन में आ गया था, तो किचन में आना और बाबा का वरदान मिलना है दोनों एक साथ साथ हुए। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मेहनत तो भले ही की है, लेकिन बिना प्रभु कृपा के कोई योगी नहीं बन सकता, ये मेरा अनुभव है। तो रोज अच्छी अच्छी गाइडलाइन मिलती थी, रोज जो भोग लगता था ना दो टाइम, उन दिनों संदेशी बहने भोग लगाती थी, कैलाश बहन गांधीनगर वाली, वो भी किचन में थी, तो वो रोज भोग लगाती थी। तो हम भी सब जा बैठते थे संदेश सुनने, और एक छोटा सा संदेश 1 मिनट का आता था, और वो इतनी अच्छी गाइडलाइन होती थी हमारे लिए, योग इस तरह करो, ये करो, ये करो, बस थोड़ा थोड़ा 1 मिनट में। तो उससे बहुत मदद मिल गई। तो एक लक्ष्य था कि जो कुछ बाबा कहता है उसे साथ साथ करना है, छोड़ना नहीं है। ये मेरा लौकिक पढ़ाई से संस्कार था कि जो कुछ आज पढ़ाया गया आज ही तैयार, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होती थी तो रोज का रोज तैयार। इसलिए न मैं कभी रात को जाग के पढ़ता था, न एग्जाम से पहले रटाई करते थे, कुछ नहीं, सब तैयार रहता था। वही संस्कार यहां चला। तो जो बाबा ने आज कहा आज ही अभ्यास शुरू। बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कराई साधनाओं में, तो इसका तो सारा श्रेय बाबा को जाता है। उसने बल भी दिया, वरदान भी दिया और गाइडलाइन भी दी, तो बहुत अच्छा प्रसाद चला। भगवान राजी हो गया था, ये हमें पता चल गया था कि भगवान राजी हो गया है तुमसे। तो जब वो राजी हो जाता है तो क्या क्या कर देता है, ले लो जो मेरा है सब उड़ेल देता है, ले लो सब। तो ऐसा मुझे बहुत अनुभव होता था। अव्यक्त बाबा से मिलना बहुत हुआ, बाबा नाम सहित बुला लेते थे। किचन में हम थोड़े से ही थे तो बाबा कह देते थे किचन वालों को बुलाओ, कभी मेरे नाम लेके ही बोल देते थे। अच्छी अच्छी बातें होती थी बाबा से, जो कुछ हमें पूछना है वो हम बाबा से डायरेक्ट पूछ लेते थे। तो सब बातें क्लियर होती गई, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते थे जिनका उत्तर न किसी के पास था न हमारे पास था। तो मैं सोचता था ये डायरेक्ट बाबा से ही पूछा जाए। एक सुना देता अनुभव। तो एक दिन मधुबन वालों के लिए बाबा आ रहे थे, दीदी मनमोहिनी ने मुझे कहा कि आज बाबा आ रहे, कुछ काम तो नहीं है, थोड़ी सी मुरली चलेगी, बाबा से रू ध्यान करनी है, चिट चैट करनी है, कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखना। तो वो 3 क्वेश्चन जो मेरे पास थे वो मैंने रख लिए। वो पढ़ाई में भी लौकिक में इंग्लिश में एक लेसन आता था 3 क्वेश्चंस, तो मैंने भी 3 क्वेश्चंस रख लिए। तो मेरा टर्न आया मिलने का। दीदी ने कहा बाबा सूर्य कुछ पूछना चाहता है। हाँ पूछो। तो मैंने बाबा से पहला प्रश्न किया कि भक्ति में जो नहीं, पहला प्रश्न था कि जब हम सतयुग में हैं, आप परमधाम में हैं, तो आपकी स्थिति क्या है वहां? एक्टिव है क्या? है नीचे देखते हो? बाबा मुस्कुराने लगे जैसे आप लोगों ने हंस लिया। कहा उस टाइम सब कुछ समाया रहता है, क्योंकि कोई याद ही नहीं कर रहा ना नीचे से, तो वो जगह भी कैसे? इनएक्टिव है। तो फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया, ये प्रश्न मेरे अंदर बहुत चलता था और मैं इसकी खोज में था, इसके उत्तर की खोज में, कि भक्ति में जो साक्षात्कार होते हैं वो आप कराते हो आकर या ऑटोमेटिक होता है? तो बाबा ने कहा ऑटोमेटिक है वो ड्रामा में। अब तीसरा प्रश्न किया कि संगम युग पर जो बच्चों को साक्षात्कार होते हैं वो भी ऑटोमेटिक हैं या आप कराने जाते हो? तो ये उत्तर ऐसा था, पूरी सभा मगन हो गई और मेरे आनंद की तो सीमा नहीं रही और बाबा दृष्टि दे रहे, मैं सामने हूं, कोई ना मुझे कह रहा कि उठो जल्दी, हलचल समाप्त हो गई। बाबा ने कहा इस संगम युग पर बाप साक्षात्कार कराने जाते हैं क्योंकि इस समय मैं ड्यूटी पर हूं।
वाह,
भगवान ऑन ड्यूटी। एकदम डीप साइलेंस हो गई, मजा आ गया उस दिन। फिर मिलन होता रहा, वो घरेलू मिलन था बाबा से। चलो आगे चलो।
वैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुरली से रिलेटेड है, क्या मुरली सुनना भी योग है?
मुरली योग युक्त होकर सुनी जा सकती है, पर मुरली सुनना ज्ञान का सब्जेक्ट है, क्योंकि मुरली में रोज बाबा हमें कुछ स्मृतियां दिलाते हैं, तुम क्या थे, कहां थे, कैसे उतरते आए हो। अगर हम उस फीलिंग में आते जाएं साथ साथ तो वो योग हो जाएगा, अन्यथा वो ज्ञान का सब्जेक्ट है।
इसी से ऐसे रिलेटेड, वैसे आप कैसे मुरली सुनते हैं? और
हाँ, मैंने मुरली का जीवन में बहुत आनंद लिया है। मुरली मेरे लिए योग के समान ही बहुत सुखदायिनी रही है। बस थोड़े बता देता हूं, शुरू में जब मैंने योग अभ्यास बहुत किया था तो मुरली ऐसे सुनता था कि बुद्धि शिव बाबा के स्वरूप पर स्थिर और नीचे मुरली सुन रहे हैं, ये मुझे बहुत प्रैक्टिस हो गई थी। फिर इसमें दूसरा एडिशन कर दिया कि बाबा से किरणें पड़ रही हैं और मुरली सुन रहे हैं, और तीसरा फिर ये जो मैंने बताया कि जो बाबा कह रहा है साथ साथ अनुभूति। तो मेरा जो एक घंटा होता था वो योग ही हो जाता था। बहुत अच्छा सुख मिला है मुरली से, इसलिए जो ज्ञान की गई ये बातें हैं वो समा गई अंदर। मैं कोई पढ़ता नहीं हूं बहुत सारी मुरलियां, मैं तो मुश्किल से ही कभी पढ़ता हूंगा, लेकिन वो बातें समा चुकी हैं इसलिए वो याद रहती हैं।
बाबा कहते हैं कि ड्रामा फिक्स है, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि 200 नाखूनों का जोड़ लगाना है, तो वैसे ये स्मृति के साथ हम कैसे पुरुषार्थ करें?
तो 200 नाखूनों का जोड़ लगाना भी तो फिक्स है ना, या नहीं? जब सब कुछ फिक्स है तो पुरुषार्थ करना भी तो फिक्स है या नहीं? लेकिन खेल ऐसा होता है, देखो आप सारी दुनिया का खेल देखो, एक व्यक्ति को एक छोटी दुकान है, बिजनेस है, वो सोचता है आज 5,000 रुपए कमा लेना काफी हो जाएगा, वो उसमें संतुष्ट है। दूसरा सोचता है नहीं, 5 तो बहुत थोड़े हैं, 10 कमाना चाहिए, वो 10 में संतुष्ट होता है। लौकिक पढ़ाई हो रही है, आप सबने पढ़ी है, कोई स्टूडेंट पहले से ही तैयार रहता है, मुझे 95% मार्क्स लाने हैं, वो 200 नाखूनों का जोड़ लगाता है। कोई पहले से ही तैयार रहता है, पिछले बार 50 आए थे ना आपके, 55% आ जाए, बस मजा आ जाए जिंदगी में, नाम हो जाए मेरा, होता है या नहीं? तो ये बहुत सारा खेल सूक्ष्म रूप से चलता है, वैसा ही मनुष्य को उमंग रहता है। यहां भी पुरुषार्थ में आप देख लें, बाबा कितनी बार कहते हैं 8 घंटा मुझे याद करो, पूछो आप अपने से। कई लोग ये बात सुनते ही नहीं, और कई लोग सुन के चुपचाप रिजेक्ट कर देते, ये काम अपना नहीं है, दीदियां करेंगी, सेंटर वाली करेंगी, अपना काम थोड़ा ही, हमें थोड़ा ही राजा बनना है, ठीक है मजे से रहेंगे। तो ये ऑटोमेटिक होता है, जिसको राजा बनना है बड़ा, वो 200 नाखूनों का जोड़ लगाएंगे ही, जिसको बाबा कहता है ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ कराएगा।
मान शान की सूक्ष्म इच्छाओं से कैसे बचें?
देखिए, ये अध्यात्म में सबसे बड़ी चीज है, नाम मान शान सबको चाहिए, है या नहीं? सबको चाहिए। किसी को भी आप मान दे दो, कुत्ता आपको भौंकता आ रहा है, मान दे दो, पुचकार दो, शांत हो जाएगा, और जरा आंख दिखाओ
और चिल्लाएगा,
पीछा करेगा। मान तो जीव जंतुओं को चाहिए, सांप को भी चाहिए। मैं देखा, मैं घूमने जाया करता था, वहां भी एक काला बड़ा सांप था, 3 बार मेरी मुलाकात हुई, एक दिन आगे आगे जा रहा, मैं उसके पीछे चल रहा, दूरी थी थोड़ी 20 फुट की, अब मैं देख रहा ये चल रहा है, लेकिन उसको आभास हो गया और उसने अपना फना उठाया ऊंचा और मुड़ के मुझे देखा। मैंने कहा ठीक है, चला गया चुपचाप। प्यार सबको चाहिए या नहीं? तो नाम मान श्यान ये भी सबकी आवश्यकता है, लेकिन इसको मांग कर लेना कमजोरी है, इसको अधिकार से लेना हमारा अधिकार है। हम इतने योग्य बन जाएं, संसार हमें सम्मान दे, हमारा नाम तीनों लोकों में गूंजने लगे, भगवान के दिल पर हमारा नाम आ जाए, तो हम सभी स्वमान में रहें, योग के अच्छे अनुभव करें, तो ये इच्छाएं स्वतः ही धीमी पड़ जाएंगी, हल्की हो जाएंगी। आत्मा खाली है तो उसे ये सब चीजों के पीछे दौड़ लगानी पड़ रही है, और जो आत्मा आंतरिक रूप से भरपूर है ये उनके पीछे दौड़ लगाती हैं। और बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है एक अध्यात्म जगत में ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, हमें इन चीजों का सच्चे मन से त्याग कर देना चाहिए। बाबा कहा करते थे, बच्चे मेरे लिए बहुत सुखद बात थी, बाबा ने कहा था, बच्चे तुम्हें तो भगवान सम्मान दे रहा है, मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे? बहुत काम आई मुझे बात, जिन्हें भगवान सम्मान देता हो वो कैसे सम्मान के पीछे भागेंगे, सारा संसार प्रकृति सहित उन्हें सम्मान देंगे, होगा या नहीं? प्रकृति भी सम्मान देगी।
वैसे एक प्रश्न है, बच्चे कई बार कहना नहीं मानते, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते,
बाबा भी ऊपर से सोचता है ये बच्चे कहना नहीं मानते, सोच लो भी आप बाबा का कहना मानो, बच्चे आपका कहना मानेंगे, सीधा सा हिसाब।
तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है वैसे उसका?
कोई बात नहीं, बाबा अगर गुस्सा करने लगे तो सोच लो क्या हो जाएगा, पढ़ ले आ जाएगी धरती पर, इसलिए गुस्सा नहीं, प्यार स्वमान उससे समझाएंगे। मैंने कई बातें कल भी बताई थी, फिर बता देता हूं, बच्चे जब सोए हैं, ये बहुत सुंदर टेक्निक है, सभी यूज कर सकते हैं, भाई बहने बच्चों पर, किसी और पर भी, आप बच्चे घर में हैं, आपके 2-4 रूमी होंगे, उनके पास चले जाओ और उन्हें आत्मा देखो, ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं हमारे घर में, भाग्यवान आत्माएं आई हैं हमारे घर में, बाबा ने ये फूल दिए हैं, ये फूल हमारे घर की शोभा है, खुशबू बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं ये, बहुत अच्छे आज्ञाकारी हैं। 7 दिन लगातार करना, लेकिन सेम टाइम, वही टाइम रोज, इफेक्ट देखना, 21 दिन कर देना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बच्चा कितना भी गुस्से वाला हो, उसको संकल्प दे देना, इसमें भी तो प्यार है, आत्मा मूल रूप से प्रेम स्वरूप है, अब इसका प्यार जागृत हो जाएगा, जगा देना, प्यार को जगा देना, ये हम वाइब्रेशन दे के जगा सकते हैं। हैं?
तो
देखो कितनी बार कर रहे हैं, हर एक के संस्कार कितने पुराने हैं, कर्मों का खाता कैसा है, आपसे नाता कैसा है जन्म जन्म का, ये सब बातें काउंट होंगी। इसलिए जैसे मैंने कल आपको एक संकल्प दिया था, हार नहीं माननी है, प्रयास करते रहो, सबको बदलना ही है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, तुम्हें ही तो संपूर्ण बनना है, क्या तुम्हारे अलावा कोई और बच्चे आएंगे तो संपूर्ण बनेंगे, तुम्हें ही बनना है। तो देखो बाबा हमें इस तरह की टीचिंग्स देते हैं, हम भी इस पे ध्यान दें।
वैसे किसी ने बहुत ही माफी भी मांगी है और पूछा है, प्रश्न नहीं उत्सुकता है, द्वापर त्रेता में आबू में ऐसा क्या था कि हमारे ब्रह्मा बाबा आबू में आके उन्होंने मधुबन बनाया।
ये तपस्वी भूमि रही है बहुत समय से, जब हम लोग भी यहाँ आए तो यहाँ बहुत सारे साधु संत गुफाओं में रहते थे, हम भी गए उनके पास कई बार, तो ये बहुत पवित्र भूमि रही है। जब हम यहाँ आए यहाँ चोरी चकारी का नाम निशान नहीं था, कोई कोई विजिटर आते थे, सामान रखा दुकान के आगे, बताया दुकानदार को भी मेरा रखा है ये, सारा दिन घूम के आ गए, शाम को उठा लिया। तो ये एक बहुत अच्छी पवित्र भूमि, ऋषियों की भूमि, इसलिए बाबा ने ये चुना।
सतयुग में भी फिर सब कुछ रहेगा
ये? हाँ निश्चित रूप से, ब्यूटीफुल पर्वत बन जाएगा। और सतयुग में अब सबको यहाँ आने का अट्रैक्शन है, तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों में बना रहेगा, आप सब विमान लेकर यहाँ आया करेंगे, आपके विमान ऑटोमेटिक इधर खींच के आ जाएंगे, आकर्षण है ना। हम इन चीजों का बहुत कम पता है अभी तक, जहां भगवान हजारों बार आया है ना, वहां के वाइब्रेशंस कैसे होंगे ये संसार आगे चलकर देखेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हम सब डिजिटल उपकरणों से जुड़े हुए हैं, और क्या ये उपकरण हमारे पुरुषार्थ में सहयोगी बन सकते हैं?
सहयोगी ही हैं। अभी हमें तो सेवाओं में कितने काम आ रहे हैं ये सब साधन, आप इनको पुरुषार्थ में, अच्छे गीत हैं, अच्छी कमेंट्री हैं, अच्छी क्लासेज हैं, उनको सुनो। अब मैं शाम के टाइम रोज गीत बजाता हूँ, अच्छे अच्छे आनंद आ जाता है, तो साथ हो गया ना। तो इन सब का पुरुषार्थ में, गहन तपस्या में, एकाग्रता में साथ लेना है, और अगर नेगेटिव साइड पे गए तो ये अभिशाप बन जाएंगे।
और वैसे अंत समय पे अगर हम इन पे डिपेंड हैं तो इनसे आसक्ति,
डिपेंड रहेंगे ही नहीं, ये अंत से पहले ही सब खत्म कर देना है खेल बाबा को, इसलिए सारी युवा पीढ़ी डिप्रेशन में आ जाएगी, और सारे कारोबार जो कंप्यूटराइज्ड हैं आजकल दुनिया में वो ठप हो जाएंगे, वो भी एक बहुत खराब समय होगा, क्योंकि ये सब चीजें अच्छी भी हैं तो बुरी भी हैं, और बाबा जब गहन तपस्या कराएगा तो इन सब से भी सबको मुक्त कर देगा।
वैसे एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे 2020 कोरोना में हमने बहुत कुछ सीखा, और हम ये भी जानते हैं कि आने वाला जो समय है वो परिवर्तन का समय होगा, तो आने वाले समय के लिए भाई साहब हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कैसे अपनी?
ये डराने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं डरा,
इसीलिए तो
माताओं को आज नींद नहीं आएगी, नहीं तो इसलिए आप सब उस स्वर्णिम युग को देखो जो इस परिवर्तन के बाद आने वाला है, और उससे पहले के समय को देखो, हमें तैयार करने के लिए स्वयं भगवान आ गए। दोनों बातों पर विचार करो, बीच का जैसा भी समय होगा सारे संसार के लिए होगा ना, लेकिन हमें उसमें संसार को मदद करनी होगी, तो हमारा रोल हीरो रोल हो जाएगा। जिन्होंने बहुत अच्छी साधनाएं की हैं वो प्रख्यात होंगे, उनका रियली सारा संसार उन्हें सम्मान देने के लिए आएगा। मैं थोड़े से बता दूं, लास्ट क्वेश्चन है ना, 108 रत्नों में पहले 25 मण के बहुत महान हैं, 8 तो हैं, 17 और ये सब अव्यक्त मुरलियों में है, ये सब प्रख्यात होंगे अलग अलग जगह अलग अलग समय, एक जगह नहीं, मधुबन में नहीं, सब अलग अलग जगह, क्योंकि इस ड्रामा में ये बहुत बड़ा रहस्य है कि बाबा ने अपनी महानात्माओं को अलग अलग जगह पर रखा है, विदेशों में थोड़े से, भारत में ज्यादा, विदेशों में बहुत कम। तो जहां ये महान आत्माएं होंगी, इनकी उपस्थिति आसपास के लंबे चौड़े एरिया के लिए बहुत कल्याणकारी हो जाएगी, प्रोटेक्शन देगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। तो एक बहुत बड़ा रोल हम सबको देखना है, प्ले करना है, उसकी कल्पनाएं अभी बहुत कम लोगों के पास हैं। जय जयकार होगी, साक्षात्कार होंगे, बाबा भुला देगा कि विनाश हो रहा है, दुनिया में कुछ हो भी रहा है, एकदम मगन बना देगा सुंदर सुंदर अनुभवों में। तो हम इस ओर चलें, बाकी परिवर्तन होना ही है, दुनिया खाली होनी है, हम सब जानते हैं। पापी लोग थोड़ा ही सदा जिंदा रहेंगे, पाप तो बहुत बढ़ गया ना, बाबा इन सबको खाद बना देगा आप सबके लिए कि धरती बहुत उपजाऊ हो जाए और आनंद मनाओ योग योग। ठीक है, तो तैयारी करेंगे, बहुत अच्छी। ओम शांति।
किसी को और कोई क्वेश्चन है?
पहला क्वेश्चन ये है कि बाबा कई बार मूलियों में कहता है कि आत्मा शरीर छोड़ती है तुरंत दूसरा शरीर लेती है, और हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से 13 दिन तक बोलते हैं आत्मा घर में ही रहती है, और कभी कभार बाबा मुरली में भी सुना है, मतलब मुरली
बोलते
में
जाओ, बोलते
कि सूक्ष्म वतन में भी आत्मा उस 13 दिन के दौरान कुछ कुछ आत्माएं जाती है, तो उसका थोड़ा क्लैरिटी चाहिए था।
आत्मा एक शरीर छोड़कर तुरंत वही जन्म लेती हैं जो बहुत पुण्य आत्माएं हैं, जो पाप आत्माएं हैं वो अपने पाप के अनुसार कुछ समय विचरण करती हैं, उस घर में नहीं ऊपर। जिसका मोह बहुत ज्यादा है, जब तक उनका शरीर जला नहीं दिया जाता वहीं रहती है। जब देखता है वो आत्मा देखती है, जल गया मेरा शरीर, अब कोई मुझे मेरे लिए रो भी नहीं रहा, सब चुप हो गए हैं, चलने की तैयारी करती है। इसलिए कोई फिक्स नहीं है, और सूक्ष्म वतन में बाबा अपने अमूल्य रत्नों को कुछ समय रखते हैं, उन्हें रेस्ट देते हैं। ये सबके लिए बात नहीं है, बस इतना ही है।
दूसरा क्वेश्चन है भाई जी, कई आत्माओं को सत्युग का इतना क्रेज नहीं होता है, उन्हें बस वर्तमान में अपनी स्थिति अच्छी बनानी है, तो इसका मतलब ये कि वो सत्युग में लेट आएंगे?
नहीं, वो सत्युग में भी आएंगे, अगर वर्तमान स्थिति वो अच्छी बना लेते हैं तो सत्युग में वो आएंगे ही। लेकिन मैं ऐड कर देना चाहता हूँ, अगर सत्युग का भी नशा होगा, एक हाई स्टेटस पाने की लगन होगी, तो पुरुषार्थ में और तीव्रता आ जाएगी, और वो जो देव संस्कार हैं वो जल्दी धारण हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को भविष्य का स्वरूप बहुत क्लियर था और वो उसके नशे में बहुत रहते थे, मामा भी, तो उनके संस्कार वर्तमान में समाने लगे थे, ये फायदा होगा।
और एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे योग में निराकार अवस्था समझो या निराकार बाबा को बहुत सहजता से देख पाते हैं, पर जब ब्रह्मा बाबा में मतलब बाप दादा दोनों देखना हो तो थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ता
कोई
है।
कोई बात नहीं, जो आपको इजी हो रहा हो उसको करते चलो, उसको करते करते दूसरा भी इजी हो जाएगा। बहुतों को दूसरा होता है कि बाप दादा को देखना इजी, निराकार को देखना कठिन। ये हरेक की अपनी भिन्न भिन्न चीजों पर डिपेंड करता है। जो जिसको सहज हो, जहाँ योग लगाना सहज हो वैसे ही करें, बाकी सब चीजें धीरे धीरे सहज होती जाएंगी।
और एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जैसे आजकल पीस ऑफ माइंड टीवी में सब में फरिश्ता ऐसे परछाई वाला दिखाते हैं और यू नो कुछ होता नहीं, तो बाबा जैसे लाइट का शरीर कहता है तो उसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या बताएं?
देखो, बहुत क्लियर आप समझ लें इस बात को, टीचर्स बहनों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आत्मा शरीर में बैठकर जो कुछ सोच रही है, उसकी एनर्जी पूरे शरीर में निरंतर फैलती है। आत्मा के जो 7 गुण हैं, वो भी तो संकल्प है ना, शांत, लव, सुख, वो एनर्जी भी जिसके पास जो जितना ज्यादा है, उसकी एनर्जी पूरे शरीर में फैलती रहती है, और इस एनर्जी से ही सूक्ष्म शरीर बनता रहता है। तो ठीक ऐसा ही शरीर जैसा हमें है, ऐसा ही चेहरा, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाएगी तो सूक्ष्म शरीर इससे निकल के उसके साथ रहेगा। जब से आत्मा परम धाम से नीचे आई है, वो सूक्ष्म शरीर के बिना कभी नहीं रही है। एक शरीर छोड़ा, सूक्ष्म शरीर सहित निकली, गर्भ में गई, सूक्ष्म शरीर साथ रहा, और ये सूक्ष्म शरीर तभी छूटेगा जब हम वापिस जाएंगे।
तो सब एक ही सूक्ष्म शरीर होता है?
नहीं, एक ही नहीं होगा, उसमें चेंज होती रहेंगी।
थैंक यू।
चलो अभी टाइम हो गया।
थैंक यू।